आदि मनाते हैं और कुछ जगह हम लोग गुड़ी पौड़ा मनाते हैं अलग अलग, तो आप सबको बहुत बहुत विशेष देने के लिए अलग अलग राज्य से हमारे भाई बहन आएंगे और आप सबको उसी भाषा में विशेष देंगे। आप सब बैठ जाइए और अटेंशन से सुनेंगे कि कैसे विशेष दे रहे उस भाषा से। तो शुरू करेंगे अलका दीदी से। दुर्गेश बहन जी हम सब कोरिया में, हाँ उड़िया में विश करेंगे। दुर्गेश बहन आइए।
ओम शांति। अजी गुटी बड़ा संगठन विराट परिवार रे आमे सबु भाई भोनी एकाठी हेचे नुआ वर्ष पालन अवसर रे समस्तंकु परमात्मा को कोळरे परमात्मा का तरफ रो बहुत बहुत शुभभावना और शुभकामना। ए वर्ष टिकु आमे बहुत भल भाबरे परमात्मांकर आशीर्वाद निर्देश को मानिकिरी निजर स्वरूप रे परमात्मा शिक्षा को धारण करिकिरी परमात्मा प्रत्यक्षता रे निहाती आमे उपयोग करिबा। ओम शांति।
थैंक यू।
ओम शांति। तेलुगु तेलुगुलो चेप्तुना उगादि पंडुगादि अंदर की शुभाकांक्षलु అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఉగాది పండుగాది
ఓం శాంతి విశ్వ వసునామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ ఒందు వస వర్షద దినవన్ను నావు ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವವನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇವು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಹಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ತಗೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ನೋವು ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಡೀತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ಹಲೋ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. புதுவருட நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று வருடத்தின் முதல் நாள் கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவில் கொண்டாடுகிறார்கள். இந்த தினத்தில் அனைவரும் அறுசுவையான பச்சடி தயார் செய்து சாப்பிடுவார்கள். வாழ்க்கையில் கூட அறுசுவைகள் கலந்து இருக்க வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் புதுவருட நல்வாழ்த்துக்கள்.
மராட்டி மராட்டி
जो सिंधी भाई बहने आए थे जिनको विश करना था दो माताएं आई थी तो आप मंच के पीछे आएंगे तो आप अपनी भाषा में हाँ जल्दी से जल्दी आ जाइए.
ओम शांति. वसंत ऋतुची साहुल क्षितिजावर सूर्याची किरणे नव्याने फुलणारी नव्याने फुलणारी हिरवळ येते घेऊन गुढी पाडव्याची चाऊल सुख दुःखाप्रमाणे गुढीतही आहे कडू गुड चवी सामेळ तसाच आहे जीवनाचा हा खेळ पुन्हा घेऊ नवा ध्यास आणि सुरुवात करूया नवीन वर्षाला खास गुढी पाडव्याची हार्दिक शुभेच्छा.
ओम शांती. सर्वांना नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. चंदनाच्या काठीवर शोभे सोन्याचा करा साखराच्या गाठी आणि कडीलिंबाचा तुरा मंगलमय गुड़ी भरजरी खण स्नेहाने साजरा करा पाडव्याचा सण गुड़ी पाडवाचा मराठी नवीन वर्षाचा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.
थैंक यू. आइए.
ओम शांति. सिंधी में बोल रहे हैं. तवा सबनी भेनरन भावरन के चेटी चंड जो लख लख करोड़ करोड़ पदमा पदम शिव बाबा के तरफा असाजे तरफा वाधायूं वाधायूं वाधायूं. आयो लाल कयो झूले लाल.
ओम शांति. गुड़ी उबारू या स्वराज्याची हिंदवी स्वराज्याची नवी युगाची अशा या गुड़ी पड़व्याच्या आपण सर्व ब्राह्मण परिवारास खूप खूप शुभेच्छा. ओम शांति.
नमस्कार. मी जळगावहून आलो आहे. नितीन बापट. आज गुढीपाडवा सगळ्यांना शुभेच्छा. आज कडुलिंबाची पानं खायची आहेत. मी ती आणलेली आहेत. कोणाला हवं असेल तर माझ्याकडनं घ्या प्लीज.
ओम शांती. नववर्षाच्या गुढीपाडव्याच्या सर्वांना शुभेच्छा. और जो हम गुढी उभारते हैं महाराष्ट्र में उसका मीनिंग मैंने बाबा के ज्ञान से एक थोड़ा सा उसमें ये कर दिया है परिवर्तन कि गुड़ी का जो लकड़ी रहती है उसको कहते हैं दृढ़ता. बाबा दृढ़ संकल्प करो और जो नारिंग रंग का वस्त्र वो पवित्रता का प्रतीक करके और जो ग्रीन पत्ते या करते वो संपन्नता का प्रतीक और जो उसको गाठी बांधते वो मधुरता का प्रतीक और जो कलश उस पे उल्टा करके रखते वो ज्ञान कलश हमेशा ज्ञान का चारों ओर बाबा का ज्ञान हम लोग प्रसारित करें. ऐसी एक गुड़ी का मीनिंग मैंने बाबा के ज्ञान से कि यही बाबा का झंडा लहराने का एक प्रतीक है. ओम शांति.
थैंक यू. ओम शांति. तो अभी जो है प्रोजेक्ट नंबर 2 श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार है. तो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं बीके श्रीकांत भाई और संजय भाई जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर. तो गुजराती में भी सबको विश करना चाहते.
ओम शांति. चैत्र मासनो नवु वर्ष हिंदू नवु वर्ष शुरू थई रह्यु छे. तो बधाने एनी शुभ भावना मंगल कामना. आ दिवसे ब्रह्मा बाबाए एम कहेवाय छे के एमना संकल्प थी सृष्टि नी रचना करी हती जे आपणा बाबा पण करी रह्या छे. अने साथे नवरात्रि मां 9 दिवस तपस्या करवामां आवे छे 9 शक्तिओनी. एटले एमां एम कहेवाय छे के जेनी आत्मज्योति जागी अने ए आत्मज्योति जागवाथी अष्ट शक्तिओ जागी जाय छे. तो मारी शुभ भावना छे कि आप पण भविष्यना देवी देवताओ के आपनी पण ज्योति जागीने अष्ट शक्तिओ जागृत थाय अने आखा विश्वमां फैलाय एवी दिलनी शुभ भावना शुभकामना. ओम शांति. ओम शांति. आप सभी ने मराठी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा ऐकल्या. पण मी जळगाव खान्देशहून आलेली आहे म्हणून तुमच्याजवळ ऐराणी भाषेतून बोलणार आहे. मंचावर बसलेल्या सर्व मान्यवरांना आणि सभामधील सगळ्या माझ्या भाई बहिणींना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. ओम शांति.
सारे ब्राह्मण परिवार नू नवे साल दियां लख लख वधाइयां. खुशियां मनाओ ते भंगड़े पाओ. बाबा दे नाल मिलन मनाओ.
भारत इतनी समृद्ध देश है. अलग अलग भाषाएं लेकिन हम सब एक है. नहीं तो हम आप सबको बहुत बहुत बधाई हो. अभी प्रोजेक्ट के बारे में अविनाश भाई कोऑर्डिनेट करेंगे और विस्तार से वर्णन करेंगे. अविनाश भाई.
ओम शांति. इस सत्र की शुरुआत करने से पहले हम पांच मिनट में एक बहन है, सलोनी बहन हैदराबाद से, उन्होंने बहुत सुंदर योग के प्रयोग का अनुभव किया है, तो वो आप सबसे शेयर करेंगे, उसके बाद हम फिर प्रोजेक्ट पे आते
हैं। ओम शांति। इस शरीर का नाम है सलोनी बहन, हैदराबाद से हूँ और लगभग 30 साल से ज्ञान में चलती हूँ। और मेरी माताजी उर्मिला बहन, वो तो 30 साल से अधिक ज्ञान में चलते हैं। आप में से कई भाई बहने उनको जानते भी होंगे, अभी वो नहीं आए हैं इस समय स्पार्क मीटिंग में। तो पिछले महीने, फरवरी के महीने में शिवरात्रि के समय एक बहुत ही योग के प्रयोग द्वारा अद्भुत अनुभव हुआ। वो स्पार्क के बहुत ही एक्टिव मेंबर रहे हैं कई वर्षों से और योग के प्रयोग करते रहते हैं, सब कुछ उन्होंने इसी विंग से सीखा है। तो ये अद्भुत जो अनुभव हुआ, श्रीकांत भाई जी ने बोला कि आप सभी के साथ शेयर करें। शिवरात्रि के समय की बात है, उर्मिला बहन वो एक कैंसर पेशेंट है और उनका कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो दो दिन पहले हम कीमोथेरेपी करा के आए थे। कीमोथेरेपी के दौरान बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, निश्चित है। डॉक्टर ने भी हमें बहुत सतर्क किया था, हम भी बहुत ज्यादा अलर्ट थे, लेकिन तुरंत दो दिन के बाद ही उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ढलने लगी कि हमको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने सारे टेस्ट कराए थे एंड ऑल द टेस्ट वॉज वेरी गुड। तो डॉक्टर्स ने भी बहुत इजिली डिस्चार्ज किया था और कहा कि अभी वन वीक कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए। लेकिन दो दिन बाद ही धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, हमको समझ नहीं आया। तो तुरंत इतनी ज्यादा खराब हुई कि जैसे वो अपने आप में नहीं थे और अपनी बॉडी को जैसे लूज कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल हमको ले जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी कि मैंने तुरंत ब्लड टेस्ट वाले को घर पे बुलाया। वो मुझे बाबा ने टच किया था, ब्लड टेस्ट वाले को कॉल करो और अभी बुलाओ, इतना भी समय नहीं है कि आप हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ किया जाए। ब्लड टेस्ट वाले ले आके तुरंत ब्लड टेस्ट लिया। मैंने बोला जितना जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट दो हॉस्पिटल पहुंचने के पहले। तो उसने सच में 15 मिनट में ही रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट में आया कि उनका हीमोग्लोबिन 2 हो चुका है और बॉडी में से पूरे प्लेटलेट्स खत्म हो चुके हैं। हमने फटाफट, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर को रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने तुरंत एएमसीयू में उनका पूरा अरेंजमेंट करवाया और बोला कि अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो इतना फास्ट ये कार्य हुआ, मुझे खुद अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। और एएमसीयू में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो 4 यूनिट्स उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा। 75 ईयर्स की एज, कैंसर पेशेंट स्टेज 3 और बॉडी में पूरे जो कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बहुत फास्ट हुआ और वो बिल्कुल कॉन्शियस थे कुछ और कुछ अनकॉन्शियस थे। उनको बार बार ये एहसास हो रहा था, आभास हो रहा था कि अब मेरा परमधाम जाने का समय आ गया है। और जब वो घर पर ही थे, बहुत मीन्स पीड़ा हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, तब उन्होंने श्रीकांत भाई जी को याद किया और मुझे बोला कि तुरंत उनको फोन करो और बोलो कि बस अभी मुझे मुक्ति का वर्षा दे दो और ब्रह्म कुमारी में ही मुझे अभी कुछ हो सकता है, मुझे और बचाने की कोशिश नहीं करो, आप मुझे मुक्ति का वर्षा दे दो। कुलदीप बहन जी को फोन किया, श्रीकांत भाई जी को फोन किया। तो मैंने भाई जी को कॉल किया था, संडे का दिन था, इंटरनेशनल योग का दिन था, तो भाई जी ने बहुत प्यार से स्वीकार किया उस बात को और कहा कि हम जरूर योग करेंगे। और शायद कई भाई बहनों को उन्होंने मैसेज भी दिया, योग करवाया। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमको नहीं लगता था कि वो बच पाएंगे और हम भी पूरी तरह से रेडी थे। और हमने बाबा को भी बोल दिया था कि बाबा अगर उनका आगे का पार्ट कुछ और है तो भले हम रेडी है, क्योंकि आत्मा ने बहुत बहुत तप तपस्या पुरुषार्थ किया था और उनको तो आभास हो ही रहा था कि बस मुझे अभी बाबा के पास जाना ही है। लेकिन ड्रामा ऐसा था, ड्रामा की मर्जी थी। मैंने बाबा के रूम में जाकर बोला हॉस्पिटल जाने के समय कि बाबा आपकी जो मर्जी है वो हमें स्वीकार है, लेकिन हाँ, अगर उनको यहाँ रखना है इस शरीर में तो उनको फिर आगे तकलीफ न हो, वो स्वस्थ रहे। ऐसे करके हम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे तो जब बीच बीच में जब उनको कॉन्शियस आ रहा था तो वो बाबा की फोटो मांग रहे थे। मैंने बोला हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फोटो निकालूं और बैग में रखूं, मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगी। लेकिन वो माने नहीं, तो बाबा के उन्होंने छोटे छोटे कार्ड लिया और उनको जैसे ही AMCU में भर्ती किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने बुला के हमको बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है केस, इनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, डायलिसिस स्टार्ट हो सकता है, या हो सकता है वो शरीर भी छोड़ दे, आप कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाइए। तो हम सब रेडी भी थे और सब मिलकर चारों तरफ योग तपस्या कर रहे थे। सेंटर पे भी हमने इन्फॉर्म किया और हिमायत नगर सेंटर के सारे भाई बहनों में भी बहुत योग तपस्या, उनको शुभ वाइब्रेशंस दिए, उनके प्रति भोग लगाया गया। उस रात निकलने के बाद जैसे ही सवेरे हुआ और डॉक्टर से मीटिंग हुई, डॉक्टर वॉज सो हैप्पी। उन्होंने बोला कि ये एक मिराकल ही हुआ है, मतलब ये दिस वॉज नॉट पॉसिबल। जिसका हीमोग्लोबिन 2 हो चुका है, बॉडी में से प्लेटलेट्स खत्म हो चुके हैं, तुरंत प्लेटलेट्स का इंतजाम करो, डॉक्टर ने कहा। तो मेरे फैमिली मेंबर में से ही लकीली किसी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और प्लेटलेट्स भी उन्होंने दे दिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट्स चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना फास्ट ग्रोथ ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी डे बाय डे बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। और उस दिन से आज तक एवरी सिंगल डे बहुत अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि ये केस कैसे सफल हुआ, संभव हुआ। और उसके बाद फिर हमने उनका जो ये सारे एपिसोड में हमने ऑब्जर्व किया कि वो स्पार्क टीम के बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने यहाँ पर जो पुरुषार्थ सीखा, स्टार्टिंग फ्रॉम अमृत वेला टू गुड नाइट, बाबा को जो गुड नाइट करते हैं, ये मैंने देखा कि हम रात में उनको दो दो नींद की टैबलेट देते थे, फिर भी आत्मा का इतना पक्का पुरुषार्थ या संस्कार था कि बराबर 3:30 बजे वो उनकी आंख खुल जाती थी और बाबा को याद करते थे। भले कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो बॉडी में, वो 6 बजे उठकर स्नान करके, भले स्पॉन्ज बात हो, भले रिफ्रेश हो, वो फ्रेश होके 6 बजे उठकर व्हाइट ड्रेस पहन के बैच लगा के उनको बैठना ही है, बाबा के सामने अटेंडेंस देना ही है। AMCU में जब गए, मैं बीच बीच में मिलने जाती थी तो सारे सिस्टर्स के हाथ में बाबा के कार्ड्स रहते थे और वो सारे सिस्टर्स को इशारे से, भले हाथ में कैन्यूला लगा हुआ होता था, लेकिन इशारा करते थे कि गॉड को याद करो और बाबा का कार्ड सभी को देते थे। तो ये जो आत्मा की इतनी पक्की स्थिति, सेवा करने का संस्कार, पुरुषार्थ का संस्कार, वो हमने देखा है कि उन्होंने यहाँ आकर स्पार्क मीटिंग में ही सीखा है, उसको आजीवन अपनाया है, इतनी पक्की प्रैक्टिस की कि उनकी मन में, बुद्धि में, उनके संस्कार में योग, योग और योग ही है। फिर वो जब जैसे ठीक होने लगे और रूम में आ गए तो उन्होंने हमको बोला कि मुझे बुलाया क्यों वापस। तो हमने बोला आप गए कहाँ थे, AMCU में तो एडमिट थे। तो बोले नहीं, मुझे बाबा ने परम धाम की बहुत मीठी साइलेंस का अनुभव कराया, मैं कहाँ थी मुझे नहीं मालूम, बट मैं परम धाम में बाबा के पास थी और बहुत स्वीट साइलेंस जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, उसका अनुभव कराया। मुझे अभी इस दुनिया में आना नहीं है, मुझे ये दुनिया, यहाँ की बातें, यहाँ की आवाज अच्छी नहीं लगती है। और उस दिन से अभी तक एवरीडे वो स्वस्थ हो रहे हैं, आज भी बहुत स्वस्थ है और यहाँ आने की उन्होंने टिकट भी बनाई थी, लेकिन अभी उनको और स्वस्थ होना है इसीलिए नहीं आ पाए। तो मैं तहे दिल से सभी स्पार्क मेंबर्स, विशेष श्रीकांत भाई जी, हमारे आदरणीय वरिष्ठ दीदियां और वरिष्ठ भाई बहने जो भी स्पार्क के हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाप दादा, आदरणीय दादियां और जो भी है, और हैदराबाद के जो भी भाई बहनों ने उनको योग का सहयोग दिया, इसमें विशेष मैंने ये देखा कि हम जितना बाबा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जितनी त्याग तपस्या हम करते हैं, ये तपस्या हम जो कर रहे हैं समय प्रति समय सालों से, वो हमारी आत्मा का डिपॉजिट होता है और लास्ट समय पर इस तरह से वो काम में आता है। तो ये अनुभव सभी को बहुत बहुत थैंक्स उनकी तरफ से। उन्होंने विशेष कहा है कि मेरी तरफ से जिन्होंने भी अपना समय निकालकर योगदान दिया उन सबको विशेष थैंक्स कहना। थैंक यू मुझे ये देने के लिए मौका। ओम शांति। थैंक यू भाई जी।
थैंक यू बहन जी, बहुत सुंदर अनुभव आपने हम सबको सुनाया और हम सभी को इससे प्रेरणा मिलती है कि कैसे बाबा अपना कार्य करा लेते हैं। तो चलिए अब इस सत्र में हम जो प्रोजेक्ट 2 है हमारा इस वर्ष का, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार, इस विषय पे हमारे कुछ वर्षों से चिंतन चल रहा था कि कैसे हमारे जीवन में जो ब्राह्मण के श्रेष्ठ संस्कार हैं, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे कभी कभी वाले शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो और सदा शब्द ऐड कर दो। तो कैसे हमारे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण संस्कार हैं वो सदा के लिए हम उसको अपना लें, ऐसा चिंतन चलता था। किस प्रकार से प्लानिंग की जाए, कैसा पुरुषार्थ किया जाए कि जो ब्राह्मण फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इतनी मजबूत हो जाए कि परिस्थितियों रूपी भूकंप इसको हिला ना पाए और हम बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। तो इसी को चलते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अलका दीदी जी से, उनको कुछ इस विषय में कुछ अनुभव हुए हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अलका दीदी जी,
ओम शांति। अब ये प्रोजेक्ट की बात आगे तो चलेगी ही, लेकिन आज श्रीकांत भाई जी के साथ कुछ हमारी ऐसे अनुभव की रूरिहान चल रही थी, तो भाई जी ने कहा आप मेरे साथ ही बात कर रहे हैं, आप सब क्लास वालों के साथ ही ये रूरिहान करो। तो बात कुछ ऐसी थी कि जैसे आज हमने सभी ने अमृत वेला किया और भाई जी ने बहुत अच्छी सकाश की कमेंट्री हमें दिलाई, तो मैंने भाई जी को कहा कि हमारे स्पार्कलर जो विशेष रिसर्च करने वाले हैं, बाबा ने उनको रूहानी साइंटिस्ट बनाया है, तो हम ऐसा, वैसे भी नया साल है, नया संकल्प करना है और कुछ नवीनता भी लानी है अपने साथ जीवन के अंदर, और कुछ दृढ़ता के साथ हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि जैसे आज भाई जी को 4 बार सवेरे अमृत वेले कहना पड़ा आंखें खोल कर बैठो, तो ये हमारे स्पार्कलर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट है दुनिया में उनकी तो आंखें दिन रात खुली रहती है, वो नींद का भी त्याग करते हैं और भोजन का भी त्याग करते हैं, जीवन की अपनी आवश्यकताओं को भी वो भूल जाते हैं और वो अपने जीवन के अंदर सारे संसार के लिए रिसर्च करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब वो कर सकते हैं इतना, जबकि उनको कोई इतना आधार नहीं है, हमारे पास तो बहुत बड़ा आधार है, बाबा ने बहुत बड़ी समझ हमको दी है, तो हम सब ऐसा कुछ कमाल करके दिखाए कि हमारी अमृत वेले आंखें बंद ना हो जाए। क्या मैं ऐसा पुरुषार्थ करने का संकल्प करे? भाई जी सब तैयार हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, शिव बाबा का विशेष कार्य जो है हम समय प्रति समय देख रहे हैं और बाबा के कुछ परिवर्तन होते हुए नजारे भी हमने सब देखे हैं। जो पुराने हैं उन्होंने सब स्टेप बाय स्टेप यज्ञ के अंदर परिवर्तन देखा है, समय के अनुसार बाबा के पालना का, बाबा के आने का जाने का, बच्चों से मिलने का सारी ही सीन हम बच्चों ने सभी ने देखी है कि इसमें कितना परिवर्तन होता रहा और इस परिवर्तन के साथ हमने अपने आप के अंदर भी कुछ परिवर्तन लाया, कुछ नहीं भी लाया जो लाना था समय के अनुसार हमने जो अपने अंदर तीव्रता करनी थी वह कभी की भी होंगी कभी नहीं भी की होंगी। जैसे बाबा ने हमें एक साल का टाइम दिया, 6 महीने का समय दिया, 3 महीने का समय दिया, फिर लास्ट में 15 दिन का समय दिया और कहा आप अपना ये पुरुषार्थ करो। तो ऐसे हम ये सब जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं एक साल के लिए हम ले रहे हैं, तो क्या उस साल भर में उस प्रोजेक्ट के साथ हम अपने आप को परफेक्ट बनाने का पूरा ही लक्ष्य रख करके कर रहे हैं या सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं? तो ये सब हमारी ऐसी रूढ़ियाँ चल रही थी कि हमें इसके लिए अपने ऊपर थोड़ा सा कोई खास ऐसा अटेंशन देने के लिए हम उस बाबा के उस पार्ट को देखें। और मैं भाई जी को कुछ अपने अनुभव शेयर कर रही थी कि मैंने बाबा के साथ जैसे कई बार समय अनुसार मैं बाबा से संदेशी को पूछ करके कई संदेश मंगवाती रहती थी। तो मैंने एक बार ऐसे ही एक साल हो गया होगा उस बात को बाबा को कुछ संदेश भेजा, तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ब्राह्मण परिवार बड़ा है और ब्राह्मण परिवार की समस्या भी बढ़ती जाएगी और एक एक आपको कहता जाएगा कि ये मेरा संदेश बाबा को दो, ये मेरा संदेश बाबा को दो, तो आप संदेशी को भेजती जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा बच्ची अब समय बाबा के पास नहीं है, तो जो संदेशी वतन में आती है बाबा को अपना समय देना पड़ता है। तो बाबा ने एक बात मुझे कही कि बाबा ने कहा बच्ची ये जो वतन का कारोबार जो भी चल रहा है ये वतन का कारोबार बाबा का भविष्य प्लानिंग का कुछ एक बाबा की कोई ऐसी सेवाएं है वर्तमान समय की भी जिसके लिए बाबा खास दादियों के साथ वतन में मीटिंग कराते रहते हैं और आप जानती हो कि दादियां सब बाबा के पास बैठी है। तो बाबा ने कहा बाबा और दादियां जैसे जैसे आवश्यकता होती वैसे वतन में मिलते हैं और उनके आपस में मीटिंग चलती है, तो बाबा को अभी ये आपकी छोटी छोटी बातों का संदेश देने के लिए टाइम नहीं है, ये तो अभी आपको अपने योग के बल से कारोबार करनी है। आप अपना योग का बल बढ़ाओ, सभी ब्राह्मणों को भी अपना योग का बल बढ़ाना है और अपने योग के बल से अपनी समस्याओं को हल करना है, न कि अभी बाबा से आप पूछो और बाबा बताएं और फिर आप करो। तो बाबा ने जैसे उस घड़ी ये जो संदेश दिया था और बाबा ने उस समय से संदेशी को कहा कि अभी आपको भी आना नहीं है क्योंकि बाबा बिजी है। बाबा धीरे धीरे बाबा ने कहा ये भी काम संदेशियों के द्वारा संदेश देने का कम करता जा रहा है। तो जैसे हमने देखा कि एक बाबा का ये संदेश हमें इशारा दे रहा है कि बाबा के कार्य में कितना परिवर्तन होता जा रहा है और कुछ उसके बाद फिर भी मैंने किसी कारण से उसको भेजा तो हमने देखा बाबा बहुत ऑफिशियल था। तो जैसे बाबा ने कहा अच्छा भेजा आपको तो ठीक है, फिर बाबा ने कहा अच्छा क्या मैसेज है बताओ, तो बाबा ने पॉइंट टू पॉइंट बस एक दो सेकंड में जैसे अपना काम किया और बाबा ने कहा बस अब बाबा ये इतना ही टाइम दे सकता है। तो जैसे हमने देखा बाबा का एकदम ऑफिशियल रूप बनता जा रहा है और बाबा अपने कार्य में अपने आप में इतने व्यस्त है कि जो व्यक्त में बाबा जो हमें पहले समय दे रहे थे छोटी छोटी बातों के लिए भी, लेकिन वो समय अभी बाबा नहीं दे रहा है। फिर ऐसे ही एक बार किसी का मृत्यु का भोग लगा, फिर जब उसका संदेश आया तो उसके परिवार ने कहा था बाबा इसको अच्छे परिवार में जन्म देना ताकि ये सुखी रहे, हमारी यही इच्छा है कि बाबा इसके अगले जन्म में इसको सुख मिले। तो बाबा ने उस परिवार को क्या सब ब्राह्मण परिवार के लिए फिर उस दिन संदेश दिया। बाबा ने कहा ठीक है बाबा इस घड़ी अपने बच्चों के सारे संकल्प सुनता है पूरा करता है, लेकिन बाबा ने कहा ये भी कब तक चलेगा, अभी बाबा ने कहा आज तो बाबा आपके कहना मान रहे हैं, उस बच्चे को बाबा अच्छे घर में भेज रहे हैं, आप सभी को बाबा योग करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा आगे चल करके ऐसा समय आएगा कि ये भी आपको अपने योग बल से करना होगा। आपको कहाँ जन्म लेना भी है तो आपको अपने योग के बल से, अपनी कमाई से, अपने लिए अपना आगे का परिवार या जहाँ सुख मिले, शांति मिले, वो सब आपको यहीं जमा करके जाना होगा। तो ये जैसे हम देखते हैं कि बाबा के इन मैसेजों की बात मैं भाई जी से कर रही थी, तो भाई जी ने कहा ये जो स्वरूप है बाबा का, ये हम सभी के ध्यान में अगर आ जाए कि बाबा का ये हमारे लिए जो समय था, जो बाबा खास हमको दे रहा था, और अभी बाबा ने एक लास्ट में हमारे लिए चांस दिया है कि आपको जितना समय बाबा से लेना हो वो विशेष अमृत वेले, और अमृत वेले बाबा से लेकर अपना खाता योग का बल का ऐसा जमा करो जो आपके योग के बल से ही आपको सब कुछ आगे कारोबार करनी होगी। तो हम समझ सकते हैं कि हमें बाबा की मदद ये अभी कुछ समय तक ही मिलेगी, और वो भी मिल रही है योग के बल को जमा करने की। तो हम इसी बात पर थोड़ा ध्यान रख करके अपना पुरुषार्थ करेंगे, तो अमृत वेला विशेष हमारा ऐसा पावरफुल होवे और स्पार्क कलर सभी योग में इतने प्रवीण हो जाए कि जब भी योग करना हो, चाहे हम सेंटर पर बैठे मुरली सुन रहे हैं, चाहे हम योग कर रहे हैं, लेकिन सभी के तरफ से ऐसी रिजल्ट पूरे साल में मिलनी चाहिए कि कोई भी योग के समय आंखें बंद नहीं करता है। हम निद्रा को जीतने का पुरुषार्थ करें। तो ऐसा आज के नए वर्ष के लिए मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है। नींद तो मुझे भी आती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है। जैसे मैं सवेरे सोच रही थी, बहुत नींद कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर सोचूं कहूं सभी को कि एक सांप बीच में आ रहा है, हॉल में सांप घूम रहा है, तो क्या हो जाता था? क्या होता था? सबकी नींद उड़ जाती थी। तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ अपने आप को कहना कि अभी विनाश का शेर आने वाला है और मेरे सामने, इसके लिए मुझे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाना है, ताकि हमारी नींद को हमें कैसे भी करके उड़ाना है, हमें युक्तियां रचनी है और हमें निंद्रा चीत बनना है। तो यही नए वर्ष के शुभ संकल्पों को आप सभी पूरा करेंगे, ऐसे हम बाबा के सामने भी उम्मीद रखते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपकी शुभ प्रेरणाओं की। और साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा एक निज अनुभव। एक बार अमृत वेला में वाकई में ही ज्ञान सरोवर में हमारे पांव के पास सांप आ गया था। शुक्र है हमारी आंखें खुली हुई थी। चलिए, तो दीदी जी ने बताया बाबा का प्रत्यक्ष रूप समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और अब हमें मास्टर ब्रह्मा बन अपने संस्कारों को पक्का कर बाप समान बनना है, और इसकी डेट हमें ही फिक्स करनी है, समय का इंतजार नहीं करना है। तो इस प्रोजेक्ट को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं श्रीकांत भाई जी और संजय भाई जी, तो मैं संजय भाई जी से आग्रह करूंगा, जो वर्तमान में स्पार्क के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, पिछले 35 वर्षों से ज्ञान में हैं और लगभग 32 वर्षों से ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं संजय भाई जी से आग्रह करूंगा इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी शुभकामनाएं दें।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें जाना है।
ओम शांति। अलका दीदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने एज्यूम किया कि एक सांप बीच में आ जाए तो नींद नहीं आएगी। ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगली बार से अमृत वेले दो चार सांप अगर बीच में छोड़ दिए जाए तो अगली बार हम लोग सोचेंगे कुछ सांपों की व्यवस्था की जाए, भले उन पॉइजनस ना हो फिर भी ध्यान तो रहता ही है कि नीचे सांप घूम रहा है। तो बहन जी ने बातों बातों में एक बड़ा सुंदर आइडिया दे दिया जागृत रखने का। योग नहीं लगेगा, नहीं पैर ऊपर करके बैठेंगे सांप नीचे ही रहेगा, फिर योग तो लगेगा। खैर बहुत ज्यादा योग लगेगा, हाँ योग तो लगेगा, कभी सांप से लगेगा कभी बाबा से लगेगा, पर योग तो जरूर लगेगा ही लगेगा और योग ही लगाना है परंतु बाबा से लगाना है। बहुत सुंदर हम लोग इस वर्ष तीन थीम लेकर के चल रहे हैं। हर वर्ष हम लोग तीन तो लेते ही थे और पीछे हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि एक ही थीम लोग लेकर के चलेंगे और व्यक्त से अव्यक्त की ओर, और वो बहुत सफलतापूर्वक कई वर्षों से चला आ रहा है। पर इस बार फिर से ये ख्याल आया कि नहीं, अब तीन ग्रुप लेते हैं उसके भी अपने कुछ फायदे हैं, तो इस वर्ष भी हम फिर से तीन थीम लेकर के आ रहे हैं जिसके आधार से हम पूरा वर्ष पुरुषार्थ करेंगे। और आज इस वर्ष जो दूसरा ग्रुप है वो है श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार, श्रेष्ठ संस्कार। वास्तव में देखा जाए तो बाबा की जो पूरी पढ़ाई है वो संस्कार परिवर्तन की ही पढ़ाई है। संस्कार से ही व्यक्ति उत्तम भी बनता है और संस्कारों से व्यक्ति कनिष्ठ भी बन जाता है। तो ये जो उतरने और चढ़ने का खेल है वो सारा संस्कारों का ही है। तो हमें संस्कारों को बदलना तो पड़ेगा ही, अगर हमें नई दुनिया में जाना है तो इन्हीं संस्कारों के साथ हम जा नहीं सकते।
तो संस्कार तो हमें बदलने ही हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम नई दुनिया में भी जरूर जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कि यहाँ से नई दुनिया जाने के पहले ये दोनों के बीच ये जो जीवन हम जीते हैं, संगम योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन, यदि इनमें हमने अच्छे संस्कारों का सुख नहीं लिया, लंबे समय का सुख नहीं लिया, तो फिर आगे हमारा पद इतना ऊंचा नहीं होता है। पद तो मिल जाएगा, परंतु पद तो छोटे भी होते हैं। हमारी पढ़ाई छोटा पद प्राप्त करने का नहीं है, हमारी पढ़ाई उच्च पद प्राप्त करने का है। और वैसे भी जब ये संस्कार बदलने लगते हैं ज्ञान और योग से, तो उसका अपना ही एक अलौकिक सुख है। किसी को क्रोध बहुत आता हो तब का अनुभव, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब हमारा क्रोध कम होने लगता है तो उसका भी एक अपना सुख होता है। किसी में बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, जैसे जैसे उसका बोलना कम होता है, उसका मन शांत होने लगता है, तो जीवन का आनंद कुछ और ही हो जाता है। किसी के अंदर प्रपंच की बहुत आदत है, दूसरों को देखने की आदत, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचने और परचिंतन की आदत, उसका अनुभव, और जब ये संस्कार छूटने लगता है तो उसका अनुभव, कुल मिलाकर के जब हमारे संस्कार डिवाइन होने लगते हैं तो ये जीवन का टेस्ट बदलने लगता है। संसार बेशक बहुत कड़वा है, संसार ये बहुत दुखदाई है, परंतु ये संसार हमें कैसे महसूस होगा, हमें कैसी फीलिंग देगा, ये बहुत कुछ हमारे संस्कारों पर भी डिपेंड करता है। हम संसार को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते, हम अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। ये संसार जो कुछ हमें देता है सुख या दुख के रूप में, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे संस्कारों का रोल होता है। सिंपल सी बात है कि योगी भी इसी संसार में रहता है और एक आम इंसान भी इसी संसार में रहता है। एक का जीवन रोते रोते गुजरता है और एक का जीवन बहुत सुख और शांति में गुजरता है। उसके पास इतनी सुख और शांति होती है कि वो दूसरों को बांटता रहता है। हम दूसरों से मांगते रहते हैं, वो दूसरों को बांटता रहता है। तो ये पूरा जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, उसका सार ही यही है कि रोज रोज हमारे संस्कार बदलते जाएं, दिव्य होते जाएं, डिवाइन होते जाएं, क्योंकि इन संस्कारों ने हमारे जीवन को बहुत दुखी कर रखा है। ये संस्कार हमको ही बहुत अधिक चुभ रहे हैं, हमें बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने ये विचार किया, हमारे बड़ों ने ये विचार किया कि संस्कार परिवर्तन का भी एक विषय होना चाहिए, जिस पर हम सब एक वर्ष तक पुरुषार्थ करेंगे। और कम से कम अगर पूरे संस्कारों को हम डिवाइन न भी कर पाए, तो कुछ दो चार बड़े संस्कार, जटिल संस्कार जो हम सबके जीवन में हैं और हम सबको परेशान कर रहे हैं, वर्ष के अंत में यानी अगले वर्ष जब हमारी एनुअल मीटिंग हो, तो कम से कम हम उससे तो मुक्त हो जाएं। क्योंकि हरेक के जीवन में वैसे तो सारी कमियां, सारे विकार हम सबके अंदर हैं, परंतु कुछ दो तीन मोटे ऐसे संस्कार हरेक के जीवन में होते हैं जो उसको बहुत परेशान करते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। किसी के पास क्रोध की समस्या हो सकती है, किसी के पास बहुत बोलने की समस्या हो सकती है, किसी कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तरह तरह के ये संस्कार हैं जो कई बार हमें ऐसा महसूस कराते हैं, हमें ये फील होता है कि यदि इस संस्कार से हम मुक्त हो जाएं, तो हमारी स्वोन्नति तेज हो सकती है। तो ऐसे दो चार संस्कारों को हमें फाइंड आउट करना है, उसको टारगेट करके पुरुषार्थ करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे इसको डाइल्यूट करना है, कैसे धीरे धीरे इरेडिकेट करना है, इसकी चर्चा हम पूरे वर्ष तक करते रहेंगे। उसकी प्लानिंग भी आप सबको मिलता रहेगा। परंतु एक चीज जो इसमें कॉमन है कि संस्कार योग से ही बदलते हैं। ज्ञान हमारे पास कितना भी हो, योग ही हमारे संस्कारों का शोधन करता है, उसे सॉफ्ट करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि संस्कारों की पकड़ वो भी योग से ही आती है। संस्कारों की महसूसता, हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसे बुरे संस्कार हैं हर एक के अंदर, परंतु हमें वो महसूस नहीं होते हैं। और इंसान की ये फितरत है कि अगर कोई उसे ये कह दे कि तुम्हारे अंदर ये संस्कार है, तुम बोलते बहुत हो, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, भोजन के प्रति तुम्हारा आकर्षण बहुत ज्यादा है, तुम्हारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, तो हमें बुरा लगता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक ब्राह्मण के लिए सबसे सुंदर तरीका ये हो जाता है कि वो अपनी कमियों को खुद पहचाने, खुद महसूस करे। जब हम खुद महसूस करते हैं तो आत्म परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है, वो भी योग से ही होता है। तो ज्ञान की चर्चा तो हम सब करेंगे ही वर्ष भर, परंतु लक्ष्य ये रखेंगे कि हम धीरे धीरे योग की गहराई में पहुंचते जाएं। जैसा कि दीदी ने कहा कि अब हमको थोड़ा समय देना है, ज्ञान और योग की गहराई में जाना है, क्योंकि इससे ही सदगति होगी। समय अब हमारे पास बहुत कम है, रोज रोज संसार की स्थिति बिगड़ रही है। अभी अभी आप लोगों ने म्यांमार की कहानी सुनी होगी, बैंकॉक की कहानी सुनी होगी, उसका न्यूज भूकंप आया है, बहुत लोग मर गए, बहुत नुकसान हुआ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमको जाने से पहले अपने आप को बहुत शुद्ध, पवित्र, निर्मल और बहुत मधुर बनाना है। तो ये जो भी प्रोजेक्ट चलेगा इसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक वर्ष के लिए ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे कि हमको अपने जीवन को सुखदायी बनाना है। ओम शांति।
बहुत सुंदर संजय भाई जी, बहुत सुंदर प्रेरणाएं आपने हम सबको दी हैं, जरूर हम इसको अपने जीवन में लेकर के आएंगे। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीकांत भाई जी से, जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य मार्गदर्शक हैं, वो यथार्थ ब्राह्मण स्वरूप द्वारा हम कैसे परमात्म प्रत्यक्षता कर सकते हैं, कैसे श्रेष्ठ संस्कारों को अपना सकते हैं, इस पर अपने विचार रखेंगे। श्रीकांत भाई जी आप सभी जानते हैं, स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 30 वर्षों से समर्पित रूप से ज्ञान सरोवर में और इस बाबा के यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीकांत भाई जी।
ओम शांति। तो जैसे हम अलका बहन जी को सुन रहे थे, आप भी सभी सुना, कौन सी बात पर आप सबकी अटेंशन गया? हाँ जी, सांप के ऊपर। हाँ जी, बाबा के पास समय नहीं है। थोड़ा इस बात को सोच रहे हैं, सिर्फ संदेश सुना। जब मैं सुना तो मुझे ऐसे लग रहा था बाबा
साकार में बहुत सारी बातें कहा है, और यहाँ जो बैठे हैं बहुत सारे हमारे स्पार्क के भाई बहन हैं जो शुरू से आ रहे हैं। हम उनको यूथ में देखा था, अभी हमारे सामने बुजुर्ग हो गए हैं, और साथ में आप भी जो इस बार पहली बार आए होंगे, ज्ञान में पुराने हैं, और आप भी जीवन में अनुभव लेकर के यहाँ पे आए हैं। हम सभी का यही कर्तव्य है, जब हम एक विशेष संगठन में जुड़ते हैं, अलग अलग सेवाएं चल रही हैं, लेकिन आप जिस लक्ष्य को लेकर के स्पार्क की मीटिंग में आते हैं या तो उसकी प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं, आप सबका ही दिल इच्छा होगी कि हम वो सब कर सके जो हमारे बाबा ने किया था। जैसे बाबा ने किया वैसे हम करें। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो हमने लिया है, इसमें उन्हीं बातों पर विशेष पुरुषार्थ किया जाएगा। जो जो बात आप मुरली में सुनते हैं, एक एक ब्राह्मण जीवन की वो अभ्यास, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ सहित अभ्यास, बातें कम करेंगे, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा की संदेश से ही पता चला कि बाबा समेट रहा है। हम सुनते थे दादियों को, दादियां कहा करते थे कि एक समय था बाबा समाचार पूछ पूछ के सुनते थे, और सुनाओ और सुनाओ। जब बाबा संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे थे, किसी को पता नहीं था, तो बाबा कहते थे कि भी एक घंटे के समाचार को कुछ मिनटों में सुनाओ। और बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया करके, क्योंकि हम जब मधुबन में आए, हमारा सौभाग्य रहा कि दादियों के डायरेक्ट पानला लेने के लिए, चाहे मनोहर दादी हो, दादी चंद्रमणि, बड़ी दादी, दादी जानकी, और अक्सर करके 18 जनवरी के समय ये सभी यही बात सुनाते थे कि दादा बाबा का अंतिम समय कैसा था, बाबा समेट रहे थे। अगर बाबा समेट रहे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी समेटना है। और हम तभी समेट पाएंगे अगर हमारी रोज की दिनचर्या में दो बात स्मृति में रहेगा, दो बात, एक मैं कौन हूं उसका अगर एक सेंटेंस में कहा जाए, पुरुषार्थ का संपूर्ण अभ्यास, संपूर्ण स्वरूप, मैं जो हूं जैसा हूं उसी प्रमाण स्वयं को जानना, इसको कहते हैं मैं कौन हूं। इसमें सिर्फ मुरली की पॉइंट को चिंतन नहीं करना है कि मैं ये आत्मा हूं, लेकिन उसके स्वरूप को धारण करना है। और दूसरा है समय, अब कौन सा समय चल रहा है, क्या हमारे पास समय है कि जैसे शुरू शुरू में आए थे अब वो समय है, नहीं है, सब कुछ समेटना है। तो समेटने के लिए हमारी ब्राह्मण जीवन को एक बार रिविजिट करना है हमें। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कोई बहुत सारे क्लासेस की बात नहीं करेंगे, जो क्लासेस की बात होगी प्रैक्टिकल करने जैसे हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी बात हम नहीं करेंगे। इसलिए किस प्रकार की पुरुषार्थ करेंगे, हम आपके सामने कुछ प्रश्न पूछेंगे अभी, और आप प्रश्न सुनने के बाद आप तुरंत जवाब लिखेंगे, जो आपके मन बुद्धि उसको जवाब देगा, और पुरुषार्थ अभी से शुरू हो जाएगा आपकी, क्योंकि मैं क्लास नहीं कराऊंगा, क्लास तो सभी कराते ही हैं। ब्राह्मण जीवन का जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार संस्कार है, तो इसका अर्थ यही है कि मुझे ये जानना जरूरी कि ब्राह्मण जीवन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अगर ये दो बात की स्पष्ट समझ हो, जानकारी नहीं, स्पष्ट समझ हो, तो हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी बात विघ्न रूप नहीं बन सकता। अगर दो बात के समझो, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन किससे कहते हैं और ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। तो आपके सामने प्रश्न रखेंगे, ये बाबा के ही मुरली की प्रश्न है और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आंसर क्वेश्चन आंसर सबसे नहीं किया जा सकता, हजार भाई बहने बैठे हैं, आप खुद आंसर लिखेंगे और मैं आंसर पढ़ के सुनाऊंगा। तो अपने आंसर को आप कंपेयर करेंगे कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं और मैं ब्रह्मा बाबा को कितना जाना हूं, कि ब्रह्मा बाबा को जानेंगे तो ब्राह्मण बन पाएंगे। तो आपकी आंसर आपको बताएगा इस लंबे पुरुषार्थ की जर्नी में आप ब्राह्मण जीवन को कैसे जानते हो, ब्राह्मण संस्कार क्या समझते हो। ठीक है, सभी रेडी हैं? कोई नींद तो नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाएंगे। सबके पास पेन पेपर हैं? यहां जो भी बैठे हैं सभी इस एक्सरसाइज को करिए। अगर ऐसे एक्सरसाइज करने से एक प्राप्ति होती है, हमेशा याद रखिए, बाबा के प्रश्न को जब जवाब देते हो तो आपकी बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा के प्रश्न को जवाब देने से बुद्धि रिफाइन होती है। जो बुद्धि रिफाइन होती है, अंतिम समय में जो भी हमारे सामने प्रश्न आएंगे, विघ्न आएंगे, उसको सामना करने के लिए आपकी बुद्धि की दो स्थिति चाहिए। एक है क्लीन और दूसरा है क्लियर। दोनों को जोड़ दो, क्लीन क्लियर, और दूसरी बात है वॉइसलेस, जिसको बाबा कहते हैं वॉइसलेस, माना ये वायरलेस कनेक्शन बन जाएगा आपका, लेकिन वायरलेस कनेक्शन से पहले आपको वॉइसलेस इंटेलेक्ट बनाना हो तो एक सुंदर अभ्यास है बाबा के प्रश्नों की उत्तर देने की, आप प्रैक्टिस करें। जैसे अलग अलग पुरुषार्थ के प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपके साथ भी क्वेश्चन आंसर किया जाता है, आपके एग्जाम लिया जाता है। तो आप इस बात को नोट कर लो, जितने एग्जाम दिए मुरली के अंतर्गत आपकी बुद्धि क्या हुई है, रिफाइन बुद्धि, समय पर काम आएगा। तो प्रश्न नंबर वन, आप ब्राह्मणों का स्वधर्म क्या है, और तुरंत आप आंसर लिखे। अगर लिख नहीं पा रहे सोच लो फिर, हम क्योंकि हम समय बहुत कम है, पांच क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको लिखना है। फिर भी ब्राह्मण धर्म का स्वधर्म, ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का स्वधर्म अर्थात धारणा है हाँ जी, अभी आंसर पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। और आप सभी जो भी आंसर दे रहे हो आपके हिसाब से बिल्कुल कभी ना कभी बाबा ने मुरली में दिया होगा, विदेही, लेकिन बाबा क्या कहते सुन लो, आप कंपेयर कर लेना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का स्वधर्म है असंभव को संभव करना। किसके उत्तर सही है, आपके है बाबा के? आप सबने असंभव को संभव किया है। तो अभी आगे चलकर के असंभव बातें आएंगे, हमारे पुरुषार्थ की धारणा की अभ्यास की इतना पक्का हो जाए, सारे असंभव जो हैं संभव हो जाए। और आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का दूसरा धर्म भी है, और एक क्या धर्म है, विकारी दृष्टि को निर्विकारी बनाना है, और इसमें हम स्वयं परिवर्तन होंगे, दूसरों को करेंगे, चाहे कोई किसी भी भावना को लेकर के आए, जैसे वो आत्मा हमारे आसपास में आ जाए उसकी भावना परिवर्तन हो जाए। और दूसरा प्रश्न है ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण अर्थात आंसर दीजिए आप लिखो लिखो आप ब्राह्मण अर्थात मर्जीवा जीवन नहीं ब्राह्मण का डेफिनेशन है मर्जीवा जीवन तो बाबा आंसर कहते हैं ब्राह्मण अर्थात कथनी और करनी एक समान हो तो जैसे चेकिंग की बात करते हैं ना कि आप चेक करिए जब से बाबा के बच्चे बने हैं कथनी और करनी कितना समान हुआ है सिर्फ कथनी करनी नहीं है बाबा उसको आगे बढ़ा रहे हैं कथनी करनी सोचना बोलना और कहना कथनी करनी सोचना बोलना कहना और सुनना ये सब एक समान होगा उसे क्या कहेंगे क्या कहेंगे तो इस बात को नोट करना हमारे पुरुषार्थ में पूरी अटेंशन इन बातों पर होगा कथनी करनी बोलना सुनना और लास्ट बाबा कहते हैं स्वरूप बन जाना तो स्वरूप के साथ कंपेयर होगा कि आपके कथनी करनी सुनना बोलना कहना समान है या नहीं है उदाहरण के लिए अगर आप स्वरूप बनना चाहते हैं शांत स्वरूप तो आपके कथनी करनी कैसी होनी चाहिए शांत तीसरा प्रश्न है ब्राह्मण जीवन में क्या नहीं होना चाहिए इसको एक पूछे तो ब्राह्मणों को क्या नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को क्या नहीं करना चाहिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा कड़ा शब्द कहा है उत्तर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को चोरी नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप सभी चोरी करते हो क्या चोरी करते हैं हम हाँ रावण की संस्कार को बाबा कहते हैं ब्राह्मण को चोरी नहीं करना चाहिए और कौन सी बात चोरी करते हैं ब्राह्मण जो अपना संस्कार नहीं है जो पराया संस्कार है उसको रोज धारण करते हैं तो पराया संस्कार क्या है रावण की संस्कार इसकी भी पुरुषार्थ और अभ्यास होगा तो लास्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को कौन सी बात हमेशा याद रखना है जो मैंने पहले पूछा था आपको ब्राह्मणों को हमेशा एक बात याद रखना है मैं कौन हूं और मैं कहां हूं तो जहां मैं कौन हूं मैं कहां हूं इस पर थोड़ा आपके सामने बात रखेंगे और मैं आत्मा हूं इसकी जो बात किया जाता है जो संस्कार परिवर्तन ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता की बात करते हैं तो उसमें 9 बातें हैं हमको नवरत्न बनना है और हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं क्लासेस सुन रहे हैं चार्ट लिख रहे हैं और इस सारी 9 बातों का ही परिवर्तन हम कर रहे हैं 9 बातों में पॉइंट नंबर 1 स्मृति पॉइंट नंबर 2 संकल्प पॉइंट नंबर 3 वृत्ति पॉइंट नंबर 4 दृष्टि पॉइंट नंबर 5 दृष्टि के बाद कृति कर्म कहते हैं कृति के बाद संबंध संपर्क और संबंध संपर्क के बाद वाइब्रेशन और वाइब्रेशन की बात वायुमंडल, और इस आठ बातों का कनेक्शन एक बात में है। अगर आप सभी को ब्राह्मण जीवन की कर्तव्य याद रहे तो, ब्राह्मण जीवन की कर्तव्य है ना, हम सभी अधिकार मांगते हैं, लेकिन अधिकार अधिकार से पहले क्या करना चाहिए हमको, कर्तव्य करना चाहिए। हम करते कम मांगते ज्यादा। जैसे उदाहरण के लिए अमृत वेले बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे लगन में मगन हो जाए, लेकिन हम और किस बातों में लगन मगन हो जाते हैं, और प्राप्ति क्या चाहते हैं, पूरा चाहते हैं। जो नौ बातों के ऊपर हम अटेंशन देंगे पूरे पुरुषार्थ के अंतर्गत, लेकिन एक सवाल के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हम पैरेलल सेशन करेंगे, अभी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके बाद भी एक प्रेजेंटेशन है जो पुणे से मुकुल भाई और स्वाति बहन कराएंगे प्रभु रत्न कंटेस्ट के ऊपर। तो एक बात पर जो हम सबको करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर बैठे हैं, जो स्पार्क की मेंबरशिप लिया है वो हाथ उठाएंगे, थोड़े खड़े हो जाएंगे सभी। आपको इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आप, क्योंकि और आधा घंटा बैठना है सबको, बीच में कोई भी नहीं उठेंगे। अच्छा, इसलिए खड़ा किया है जो बात अलका दीदी ने कहा, या अव्यक्त से अव्यक्त कोर प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसको थोड़ा टाइटल चेंज किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है,
तीसरा प्रोजेक्ट जो था उसका टाइटल चेंज किया गया है, उसका टाइटल है अंतिम समय की तैयारी, टचिंग कैचिंग एंड मेकिंग, तो ये मैचिंग। अच्छा,
चलो उसका आप आपको सुधार लो, ठीक है। तो आपको इसलिए खड़ा किया गया है, अगर रमेश भाई होते, रमेश भाई जो बात करते, मैं आपके सामने उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं रमेश भाई नहीं हूँ, याद रखना इस बात, उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे बड़े हमसे चाहते हैं कि जो स्पार्क में आते हैं उनकी जीवन में बाबा की हर बात प्रैक्टिकल दिखाई दे, और दूसरी बात है, यहाँ जो भी आप खड़े हैं या जो स्पार्क मीटिंग में आए हैं, हमारी इस मीटिंग के बाद अब से लेकर जब नेक्स्ट मीटिंग तक हम आए, हम बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के परिवार के लिए, हम विघ्न रूप न बने, समाधान स्वरूप बने, ऐसे हो सकता है? और विघ्न रूप न बने, समाधान स्वरूप बने, उसकी ही पुरुषार्थ किया जाएगा, तो हम पैरेलल सेशन में डिस्कशन करेंगे आपके सामने सम्मुख, कई बात बाबा की राज खोलेंगे आपके सामने जब हम बैठेंगे। तो एक एक्सपेक्टेशन मेरा जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम सभी स्पार्कलर ऐसे संगठित रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करें, बाप दादा दादियां रमेश भाई जो भी निमित्त आत्माएं निमित्त बने स्पार्क बनाने के लिए, तो उनकी आस को सिर्फ पूरा नहीं करेंगे, बाबा की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, इसलिए क्योंकि अंतिम समय में संगठन की बहुत आवश्यकता है, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे बहन जी ने सुनाया, उनकी माता जी से मैंने बात किया था आईसीयू में, उनकी आवाज मैंने सुना था, और मुझे लगा मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप सबके सहयोग चाहिए, मैसेज भी गया, जो जो कंट्रीब्यूशन किया योग में, आज माता जी की स्वास्थ्य क्या हो रहा है, सुधर रहे हैं, क्योंकि बाबा उस आत्मा के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। आप सबकी अनुभव होगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंपटीशन, एसे राइटिंग, कविता राइटिंग, या जो कुछ हम करके पुरस्कार लेते हैं वहां तक सीमित ना हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो जाए, ऐसा हम बड़ों को बाबा को वचन दे सकते हैं। सब एक बार हाथ उठाएंगे, तो आपको लास्ट एक बात कहे कि हम रखेंगे कि जो जो प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में करना चाहिए हमें 2025-26 में पूरा करना है, पता नहीं 26-27 की वातावरण क्या हो। कोई गारंटी है? जब बाबा समेट रहा है, अभी मुझे समेटना है। ठीक है, ओम शांति। ब्रीफ करेंगे और हम ग्रुप डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद आपको अनाउंस हो जाएगा कौन, क्योंकि 4:30 से 6 बजे तक पैरेलल डिस्कशन होगा अलग अलग जगह पर। आप सभी जो पुरुषार्थ करेंगे उसके प्लानिंग प्रपोजल बनेगा और कल शाम को उसके प्रेजेंटेशन होगा, तो आगे की जो है अविनाश भाई गाइड करेंगे। लेकिन आप सभी जरूर बैठे रहे क्योंकि प्रभु रत्न कंटेस्ट का प्रेजेंटेशन होगा पुणे से। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
जी 9 नोट नहीं किया आप लोगों ने?
कर्तव्य
कर्तव्य कर्तव्य को याद रखना, कभी भूलना नहीं है
जी।
और आप कर्तव्य को ढूंढना, अब जब आजकल हमने कुछ भाई बहने मेहनत करके कल प्रेजेंटेशन होगा, बाबा की मुरलियों को इंटरनेट में सॉफ्ट कॉपी में रखा गया है, आप मुरली सर्च करो, उसमें कोई भी बाबा का वार्ड डाल दो, सारे मुरली दिखाई देगा आपको। कभी ढूंढना आप कर्तव्य, कितनी बाबा ने बातें कहा है हमको करने के लिए, और उसको देखोगे हमको खुद को शर्म आएगा, कह क्या कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पे, और शर्म आना चाहिए हमको, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं किया है, समय सिर्फ टारगेट ले लो, 1 वर्ष पड़ा है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो कोई कट करके डाल देंगे श्रीकांत भाई ने कहा था 1 वर्ष पड़ा है। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये भविष्यवाणी नहीं है। हम अपना टारगेट ले कि मुझे जो करना है 2025-26 में कर लेना है, अगर आगे और मौका मिल जाए सोने पे सुहागा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो इस प्रोजेक्ट में हम इन 9 बातों को अपनी दिनचर्या में लेकर के चेक करेंगे, और जैसा आप सभी जानते हैं संस्कार परिवर्तन या संस्कार बनाने की एक सिंपल सी विधि है प्रतिदिन अभ्यास। रोज रोज के अभ्यास से ही हम अपने संस्कार पक्के कर सकते हैं। तो इन 9 बातों को लेकर के इस प्रोजेक्ट में विधि के रूप से लिया जाएगा, और इसके जो कुछ लक्ष्य हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन को पक्का करना, सदा ब्राह्मण स्वरूप में टिकना, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहना, और जैसा संजय भाई ने बताया अभ्यास के साथ साथ योग की भी बहुत आवश्यकता है, बिना योग के हम संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते। तो योग साधना को 8 घंटे तक लेकर जाना, साक्षात्कार मूरत बनना, और ब्राह्मण जीवन का धर्म पवित्रता, पवित्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचना। तो ये कुछ लक्ष्य लेकर के, ऑब्जेक्टिव्स लेकर के हम इस प्रोजेक्ट में चलेंगे। तो जो भी भाई बहनें इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं उन सभी को 4:30 बजे पैरेलल सेशन में आना है और तैयारी के साथ में आना है। तो आपको 2 प्रश्न हम भी दे रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, केवल वही लिखेंगे। हम अपने किन संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं? जो भी प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं वो ये प्रश्न की तैयारी करके आएंगे, प्रश्न का उत्तर आप हमें वहां देना, किन संस्कारों को हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो आप अपने में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, या आपका क्या लक्ष्य है? ये तो हमने लक्ष्य दिया है, परंतु करना हम सभी को है, तो हमें अपना लक्ष्य भी निर्धारण करना होगा। तो आपका क्या लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का, इसका भी उत्तर हम उस पैरेलल डिस्कशन में चाहते। तो इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का जो हमें मुख्य पॉइंट्स थे वो मिल गए हैं। आगे की प्रक्रिया ऐसी रहेगी, जो पुराने स्पार्कलर्स हैं वो जानते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस पर हम अलग ग्रुप बना करके चर्चा करते हैं। जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इस वर्ष हमने 3 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। पहला प्रोजेक्ट है व्यक्त से अव्यक्त की ओर, जिनके मार्गदर्शक सूरज भाई जी हैं और कोऑर्डिनेटर रुपेश भाई जी हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1। दूसरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने अभी सुना, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार, आपके मार्गदर्शक हैं श्रीकांत भाई जी और संजय भाई जी, कोऑर्डिनेटर हैं समीना बहन जी, ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। और तीसरा प्रोजेक्ट है अंतिम समय की तैयारी, टचिंग कैचिंग एंड मैचिंग। इसका पुराना जो टाइटल था वो था परमात्म सानिध्य से संपूर्णता की ओर, इसको बदल करके अंतिम समय की तैयारी टचिंग कैचिंग एंड मैचिंग, ये इनका मार्गदर्शक अलका दीदी जी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेटर तनुजा बहन जी, रामाराव भाई जी, राकेश भाई जी हैं। ये तीसरा प्रोजेक्ट है। तो अभी आप 2 मिनट में सोचेंगे कि हम आपने किस प्रोजेक्ट में भाग लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग हॉल्स नंबर आपको बताएंगे। तो 1 मिनट में आप सोच लीजिए कि आपको किस प्रोजेक्ट में जुड़ना है, फिर हम पूछते हैं। दो मिनट नहीं, एक ही पुरुषार्थ की एक ही प्रोजेक्ट लीजिए, उससे क्या होता है कि सभी का लक्ष्य तो एक ही है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को भाता है, अच्छा, तो लगभग मेरे को समझता हूँ सभी ने डिसाइड कर लिया होगा। तो पहला प्रोजेक्ट कौन कौन लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पहला प्रोजेक्ट व्यक्त से अव्यक्त की ओर। हैं जी, पहले से ही हैं, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, जो पहले से ही है अच्छी बात है। ठीक है, बैठ जाइए जी। मिलेगा आपको कल कंक्लूडिंग सेशन में। वो प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा, उसमें चर्चा करेंगे। उसमें
ब्रदर अभी ना, अभी तो आप सुना है एक सेशन है शाम को, उसमें आप तो विचार मिल गया प्रोजेक्ट में क्या क्या करेंगे, आप डिसाइड कर लो। आप कोई भी प्रोजेक्ट में शामिल होंगे लेकिन इसकी प्रपोजल सबको मिलेगा, ठीक है, आपको सब जानकारी मिलेगी। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 में दोबारा हाथ उठाइए सभी, प्रोजेक्ट नंबर 1
जी। अभी दूसरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें कौन कौन करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, संख्या के हिसाब से हॉल डिवाइड होगा, तो इसलिए आपको पूछना चाह रहे हैं जी। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए। और तीसरा प्रोजेक्ट अंतिम समय की तैयारी, टचिंग कैचिंग एंड मैचिंग। ठीक, खड़े हो जाएंगे जो हैं। ठीक, थैंक यू। तो अभी इसका हॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो अगला सत्र है उसके बाद में हम आपको बताते हैं।